लेकिन अब तो ये भी भाव नहीं रहा कि भाई ये भाई भी मर गया, क्या करें। अपने भाई को मरा हुआ सुनकर के बड़े शोक के अंदर डूबा हुआ विभीषण विलाप करने लगा, हे नीतिज्ञ, हे परम विख्यात, हे वीरों के अंदर नाम कमाने वाले रावण, आप तो बहुत ऊंचे महंगे महंगे शैयाओं पर सोने वाले थे, आप पृथ्वी के ऊपर विकराल मुंह बनाए हुए कैसे पड़े हो। जिन भुजाओं से आपने कैलाश पर्वत को उठाया था, आज वो भुजाएं पृथ्वी के ऊपर निश्चेष्ट होकर के कैसे पड़ी हैं। जिन मुक्तों का दर्शन करते ही देवता लोग थर्रा जाते थे, आज आपके सिर के ऊपर वो मुकुट आधा आधा तो है और आधा ढीला पड़ा है। हे रणवीर, मैंने आपको कितनी बार समझाया था, इसी अवस्था से बचाने के लिए आपको कितना समझाया था, परंतु आप सीता के मुंह के अंदर डूब गए, इस कारण से आपने हमारी बात सुनी नहीं, आपको अच्छी लगी नहीं, आपने और प्रहस्त ने, इंद्रजीत ने, कुंभकर्ण ने, अतिकाय ने, नरांतक ने, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि आपको अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड था। न स्वयं बहु मन्ये था तस्य तस्योदर को यम आगत है, आपने मेरी बात का आदर नहीं किया, उसका फल अब आपको भोगना पड़ रहा है। अब देखो एक बात कहते हैं, यार इतने ज्यादा शोक में डूब गए विभीषण जी, तो क्या बोलते हो ध्यान से सुनना। हे धर्म के साक्षात स्वरूप, हे अच्छी नीतियों के परम बंधक मतलब सेतु मन पुल बनाने वाले, और हे सब श्रेष्ठ बलों के खजाने रावण, आपकी दशा कैसे हो गई। अब धर्म का स्वरूप बताया है इसको, और आगे जाकर के और बोल देंगे और उल्टी पुल्टी बात बोलेंगे, तो पढ़ने वाला सोचेगा कि विभीषण जी ऐसे उल्टी पुल्टी बात कैसे बोलते हैं, तो समझदार आदमी है। आगे वो बड़ी विचित्र बातें बोलेंगे, और यहां बोलते हैं कि धर्मस्य विग्रह है, आप तो धर्म के स्वरूप थे। अरे धर्म का स्वरूप थे तो सीता का हरण कोई धर्म का स्वरूप था क्या। परंतु क्या करें, वो विलाप करें तो शोक में बोलते हैं, शोक के अंदर मनुष्य कुछ भी बोल देता है, कुछ पता नहीं चलता उसको। तो ये देखो कैसा सजीव वर्णन है वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा, कि शोक में डूबे हुए से अटपटी बातें कहलवाते हैं। शोक में डूबता है वो व्यक्ति, अटपटी बातें बोलता है। ऐसा लगता है आज जमीन के ऊपर सूरज आके गिर गया हो, ऐसा लगता है कि आज अंधकार के अंदर चंद्रमा विलीन हो गया हो, ऐसा लगता है कि आज अग्नि के अंदर सब चिंगारियां समाप्त हो गई हो, इस प्रकार से आप दिखाई देते हो, आप जो है सारे शस्त्र को जानने वाले हो, और अब आप यहाँ इस प्रकार से कैसे पड़े हो। हे राक्षस राज, आप तो इस प्रकार से धूल के अंदर लिपटे हुए पड़े हो, इसके लायक आप थे नहीं, आप तो बड़े धैर्य वाले थे, और आप एक ऐसे वृक्ष थे, जिसमें धैर्य ही सबसे बड़ा उसके अंदर प्रवाल यानी पत्ते हैं। अब धैर्य था क्या उसमें, और अपना जो हट है, अपनी बात की जो अहमियतता है, वही आपके लिए पुष्प है, आपकी तपस्या ही आपका बल है, और आपका शौर्य वो आपकी जड़ है, इतनी शूरवीरता। वो राक्षस, वो रावण रूपी वृक्ष है, वो राम रूपी वायु के द्वारा गिरा दिया गया है, आज वो रावण रूपी हाथी है, वो राम रूपी सिंह के द्वारा मार दिया गया है। वो हाथी कैसा है कि उसका जो तेज है, उसका जो तेज वही उसका दांत बना हुआ है, और उसका जो अच्छा वंश है वही उसकी पीठ बना हुआ है, और उसका जो कोप है और प्रसाद है देखो कोप माने क्रोध, क्रोध तो है उसके पैर पूंछ वगैरह, और प्रसाद माने प्रसन्नता ही बनी हुई जिसकी सूंड वगैरह, ऐसा ये हाथी राम रूपी सिंह के द्वारा मारा गया है। आज राम रूपी पयोधर के द्वारा, बदल के द्वारा राक्षस रावण रूपी अग्नि का शमन हो गया है, क्योंकि इसमें पराक्रम और उत्साह रूपी कई चिंगारियां थी और श्वास ही जिसमें धुआं था, ऐसा ये प्रतापवान राक्षस राज रूपी अग्नि वो राम रूपी पयोधर के द्वारा, बदल के द्वारा जो है नष्ट कर दी गई है। ओहो, इतनी बड़ी राक्षस सेना उसके पूंछ के समान थी, और जो है वायु पराभिजित गंधन गंधवा है, रक्षो विशेषा पल कर्ण चक्षु क्षितिश्वर व्याल हतो वसन्न है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से राम रूपी व्याघ्र के द्वारा ये मारा गया, रावण मारा गया, बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से वो जोर जोर से विलाप करने लगा। तब फिर राम जी महाराज उसके पास में आए और कई कारणों से राम जी महाराज उसको बड़े प्रेम से समझाने लगे। कहने लगे कि देखो विभीषण, इस समय में शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध होता है, ये युद्ध वास्तव में हमारी बुद्धि में तो पहले से ही हो जाता है कि या तो हम मरेंगे या मारेंगे, इसके अलावा दूसरी चीज होती नहीं, पहले से समझी हुई होती है। जो भीतर में पहले से समझी हुई होती है वही बात युद्ध में होती है। ये वास्तव में मरा है, निश्चेष्ट हो गया है, परंतु इसकी मौत बहुत अच्छी हुई है विभीषण, बहुत अच्छी मौत हुई है, क्योंकि जो इस प्रकार युद्ध के अंदर मरने वाले होते हैं, ऐसे मरने वाले लोग सोच के लायक नहीं होते, शोक करने लायक नहीं होते। युद्ध के अंदर मरना है, ये सब प्रकार के गलतियों को, पापों को धो डाल करके मरना होता है, क्योंकि ये उत्साह में मरने से वो ऊपर उठ गया, तब उत्साह दिखाकर रणभूमि में जाता है, वो मरने वाला कभी नीचे के लोक में नहीं जाता। जिसमें आपका भाई, आपका भाई तो संपूर्ण त्रिलोकी को कंपा देने वाला था, सारे के सारे इंद्रादि देवता इससे डरा करते थे। तस्मिन काल समायुक्ते न काल परिशोचितुम, इसके लिए आप क्या शोक करो विभीषण जी, ये किसी भी प्रकार से शोक करने लायक था नहीं। दूसरी बात है विभीषण, युद्ध के अंदर विजय किसी की निश्चित नहीं होती, कभी कौन जीत जाए कभी कौन जीत जाए, या तो परैर्वा हन्यते वीर, या तो शत्रु के द्वारा खुद मर जाए, और या परान्वा हन्ति संयोगे, या वो अपने द्वारा शत्रु को मार दे। इस प्रकार से प्राचीन काल से नीतियां चली आ रही हैं कि युद्ध के अंदर मरने वाला सोच करने योग्य नहीं होता। तत्वम आस्था ये विज्वर है, इस प्रकार से इस बात को समझ के शोक छोड़ो, और अब इसका जो प्रेत कार्य करना है, अंतिम संस्कार करना है, वो अंतिम संस्कार करो। विभीषण जी महाराज फिर जो है राम जी के पास में रोने लगे, खूब शोक संतप्त हुए, और राम जी को कहने लगे कि महाराज क्या बताऊं, जब ये रावण था ना तब तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन ये मरा हुआ बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, इसके लिए शोक हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में हमारा बैर नहीं था, इसके आचरणों के साथ हमारा बैर था। आप देखो पहले तो कहा कि धर्मवान विग्रह है, धर्म का विग्रह है, और अब बोलते हैं कि तो बिल्कुल अधर्म, इसके अधर्मपूर्ण कार्यों से हमारे मन में बड़ी घृणा थी, और कहने लगे कि महाराज पहले इसने इतना पराक्रम दिखाया, इतना पराक्रम दिखाया कि इंद्रादि देवता भी इसके सामने टिकते नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है, आज ये ठीक हुआ है, जैसे समुद्र से उठने वाली लहर समुद्र के अंदर तो खूब इधर उधर जाती रहती है, परंतु वो तट पर आती है लहर तब आके शांत हो जाती है, ऐसे ही आपको प्राप्त करके शांत हुआ, नहीं तो महाराज ये सब देवताओं से युद्ध करता रहता था। अनेन दत्तानि वनीप केशु, इसने बहुत याचकों को सबको खूब धन दिया था, खूब भोग भोगा था, और अपने सेवकों को इसने बहुत आराम भी दिया था, सेवकों को कोई कष्ट नहीं दिया, अपने मित्रों को खूब धन दिया और वैराणी अमित्रेशु और शत्रुओं को खूब बैर भाव भी खूब दिया, शत्रुओं के साथ बैर भी खूब रखता था, झुकता कभी नहीं था। एशो एशो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदांत कह कर्मसु चाग्र सूर है एतस्य यत् प्रीतगतस्य कृत्यं तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। आपकी इच्छा है तो मैं इसका प्रेत कार्य करता हूं। ये वास्तव में बड़ा विद्वान पुरुष था महाराज, और ये सूरवीरों में अग्रगण्य था, महातपस्वी था, महातपस्वी, और अपने घर में ही अग्निहोत्र करता था। आहित अग्निश्चय, अब मैं इसका प्रेत कार्य करता हूं। ये बात सुनकर के भगवान को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और भगवान ने उसको आज्ञा दी। कितनी बढ़िया बात कही भगवान ने, याद रखने लायक। क्या? मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। ओ विभीषण, किसी का बैर होता है वो केवल प्राण रहते हैं तब तक होता है, प्राण निकलने के बाद उसके साथ बैर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मर ही गया, अब क्या बैर की बात करो। हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया, इसलिए इसका संस्कार करो। और विभीषण याद रखो, जैसे ये तुम्हारा भाई है ऐसे ये रावण मेरा भी भाई है। वाह, कैसी उदारता की बात कही भगवान ने। भगवान की ये बात सुनी विभीषण भी गदगद हो गए, और इधर भाई रावण के मरने की बात सुनकर के अब राक्षसियां थी उसकी पत्नियां महलों से निकल निकल करके बाहर आई। वे रावण के पास में चारों ओर आकर जमीन के ऊपर पसर गई, रोने लगी, और उनके केस बड़े खुले हैं, जिस प्रकार से बछड़े के मरने पर गाय रोती है, गावो वत्स हता इव, ऐसे वे राक्षसियां वहां पर रोने लगी। वे सब उत्तर के दरवाजे से आई थी, बहुत से राक्षस उनके साथ में थे, और युद्ध भूमि में आए आकर के अपने मरे हुए पति को देखा तो बार बार हे आर्यपुत्र, हे नाथ, हे प्राणनाथ, इस प्रकार से बार बार वे छाती पीट पीट के रोती थी। और रावण का जो शरीर मरा हुआ शरीर था, उस शरीर को कि जिसमें खूब खून लगा हुआ और जिसमें मिट्टी लगी हुई, कादा कीचड़ है, मिट्टी का ही कादा कीचड़, खून का इनका ये लगा हुआ, उससे ऐसे शरीर को उन्होंने देखा और उस शरीर को अपने शरीर में लिया, गोद में रखा, खूब रोई और हथिनी के समान चिंगाड़ चिंगाड़ करके रोने लगी। और जो है उस समय में अपने विशालकाय पति को देख करके वे सब अपना सारा होश भूल गई और उनको बहुत पीड़ा हुई। किसी ने उनका पैर पकड़ लिया, किसी ने उनका कंठ था वो कंठ के ऊपर हाथ रख करके रोने लगी, कोई हाथ पकड़ के रोने लगी, कोई अपना सिर था वो सिर रख करके रोने लगी, ऐसे जो जैसी थी उसको कोई किसी प्रकार से जो है वहां ध्यान नहीं रहा, शोक के अंदर वे मूर्छित सी होने लगी। इतना रोई कि वे अपने आंसुओं से खुद ही नहाने लग गई। जिस प्रकार से कमल के फूल के ऊपर पानी की बूंदें बरसात में होती हैं, ऐसे उनके आंसू शरीर से निकलते थे और बहते जा रहे थे। उस समय में मरे हुए रावण को देखकर वे बार बार बोलती थी, हे प्राणनाथ, आपने तो इंद्र को भी डरा दिया था, यमराज भी आपसे हरदम भयभीत रहते थे, आपका भाई कुबेर भी आपसे डरता था, पुष्पक विमान आपने कुबेर से ले लिया था, गंधर्व ऋषि देवता ये सब भय के मारे आपके पास में आते नहीं थे, आपने इन सब को युद्ध के अंदर पराजित कर दिया था, वो आप आज रणभूमि में सोए हुए पड़े हैं। आप कभी देवताओं से नहीं डरे, असुरों से नहीं डरे, सर्पों से नहीं डरे, एक मनुष्य से आप कैसे मर गए इस बात का हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। देवताओं से अवध्य थे, दानव राक्षसों से अवध्य थे, वो आज एक पैदल चलने वाले मनुष्य के द्वारा मारे गए, कितने आश्चर्य की बात है। यो न शक्य सुरैर हन्तुम् न यक्षैर नासुरैस्तथा सोयम किंचिदिवा सत्वो, एक जिसमें कोई भी बल नहीं, जो बलहीन मालूम देता है, ऐसे एक मनुष्य के द्वारा आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, इससे बढ़कर आपके लिए भी क्या दुर्दिन होगा और हमारे लिए भी क्या दुर्दिन होगा। फिर शोक करती हुई बोलती है कि आपने अपने हितेशियों की बात को तो कभी सुना भी नहीं ना, उसी का ये फल है। आप सीता के हरण से पहले किसी से भी सलाह नहीं लिए, आप अपने मौत सीता को क्या लाए, आप अपने गले में बहुत बड़ी फांसी ले आए। एक सीता के पीछे सारे राक्षस मारे गए और एक सीता के पीछे आप भी रणभूमि में मारे गए और एक सीता के पीछे हम भी मारे गए। ये आपका भाई विभीषण आपको कितनी ठीक बात बोलता था। दृष्टम पुरुषितो मोहा त्वया आत्मवदकांक्षिणा, परंतु आपने तो अपनी आपके द्वारा अपनी हत्या कर ली, कौन आपको समझाए। यदि आप सीता को राम के लिए दे दिए होते तो आज लंका के अंदर ये दृश्य हमको देखना नहीं पड़ता, हमारा वंश इस प्रकार से कलंकित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के अनुसार आचरण करता है वह व्यक्ति जो है नष्ट हो जाता है। कितना अच्छा होता कि आप जो है अपने भाई के कहने के अनुसार राम को अपना मित्र बना लेते। इतनी बड़ी सेना जो आपकी शत्रु बनी थी, सारी सेना आपकी मित्र हो जाती, कितना आपका नाम होता और लोग आपको मानते कि राम है, ये रावण है, ये राम का बहुत अभिन्न मित्र है। हमने तो राम के विषय में बहुत बात सोची थी, लेकिन आपने बड़ा निर्दयता का काम किया कि आप सीता को ले आए। राक्षसा वयम आत्मा च तत्रयम तुल्यम निपातितम, आज आपने सबको कष्ट दे दिया, राक्षसों को, आपने अपने को और हम लोगों को, राक्षसा वयम आत्मा च तीनों को आपने कष्ट दे दिया। खैर आपको हम क्या दोष दें, आप तो चले गए, हम भी क्या करें, ये सब भाग्य में लिखा हुआ था, हमारा वैधव्य हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। यदि आप युद्ध के अंदर नहीं मरते, अकस्मात आपकी मौत होती तो हमारे मन में इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन आपने पाप किया, पाप करने के बाद आपने ऐसा काम किया, इस बात से हमको कष्ट होता है। बांदरों का भी विनाश हुआ, राक्षसों का भी विनाश हुआ, आपका भी विनाश हुआ, ये सब अपने अपने भाग्य की बात लगती है। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकता है। कोई सोचे कि हम ऐसा करके भाग्य को बदल लेंगे, ऐसा करके भाग्य को बदल लेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कोई भाग्य को बदल नहीं सकता है। इस प्रकार से वे बार बार बिलाप, कुर्री के समान बिलाप करने लगे। इन सब के बिलाप के साथ साथ भाई रावण की सबसे बड़ी पत्नी मंदोदरी थी, वो रावण को बहुत प्रिय भी थी और वो सबसे बड़ी भी थी। वो राम के विषय में बहुत बातें पहले से ही जानती थी, वो राम के विषय में बराबर पति को समझाती भी रहती थी, परंतु आज अपने रावण को, अपने पति को रणभूमि में मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होकर मंदोदरी वहां कहने लगी पति से, मरे हुए पति से कोई बोल सकते क्या करे बेचारे, हे महाबाहु आप तो कुबेर के छोटे भाई थे, आपके सामने देवता भी ठहर नहीं सकता था, इंद्र भी आपसे डरता रहता था, ये जो ऋषि हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, ये आपका नाम सुनते ही भग जाया करते थे, वो आप एक मनुष्य से, मनुष्य के बाण के द्वारा मारे गए, आपको लाज नहीं आई, आपको विचार नहीं आया? संपूर्ण त्रिलोकी के लक्ष्य जो है उससे युक्त होकर, संपूर्ण त्रिलोकी की लक्ष्मी से युक्त होकर के आपने इस प्रकार से अपनी मौत को बुलाया, ये अच्छी बात नहीं है। मनुष्याणाम अविषय चरतः काम रूपिणा विनाशस्तव रामेण संयोगे नोपपद्यते। आप तो मनुष्यों के सामने आते ही नहीं थे, मनुष्यों से आपका कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मनुष्य तो आपके पास में पटक नहीं सकता था, फिर भी आप राम रूपी मनुष्य के द्वारा मारे गए, ये युक्ति युक्त बात नहीं है। एक बात बताएं महाराज, ये राम ने आपको जिस प्रकार से युद्ध में मारा है, ये राम मनुष्य नहीं है, ये राम स्वयं साक्षात यमराज है। और मायाम तब विनाशाय, आपकी माया के विनाश के लिए शायद इंद्र ही राम के रूप में आया है। उस इंद्र की शक्ति थी कि जिसने आपको राम के रूप में मारा है। हे प्राणनाथ, ये राम कौन है सो मैं बताती हूं, अब ध्यान से सुनना। देखो ऐसे ऐसे समय में यहां रामायण में राम जी के विषय में बातें आती हैं। ये राम महायोगी हैं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये सनातन हैं, ये अनादि मध्य निधन है, माने संसार न इनका आदि है न मध्य है न इनका अंत होता है, सबसे महान है। ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं, ये श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले अपने वक्षस्थल पर, इनकी लक्ष्मी इनके साथ सदा रहती है, ये कभी भी किसी से जीते नहीं जाते हैं, शाश्वतो ध्रुव है, और ये शाश्वत है, निरंतर है और अचल है, माने सब समय में रहते हैं और सब जगह रहते हैं। शाश्वत माने सब समय में रहते हैं, और ध्रुव माने सब जगह में रहते हैं, अटल रहते हैं एकदम। ऐसे भगवान विष्णु ही मनुष्य का रूप लेकर के आए हैं। और हे पतिदेव, ये बंदर भी सामान्य नहीं थे, देवता लोगों ने ही इन बंदरों को अपने रूप में यहां पर भेजा था। ये बात हमने कई बार आपको समझाई थी, ये राम लोकों के ईश्वर हैं, ये लोगों के हित की कामना के लिए यहां आए हैं, इस बात का हमको खूब अच्छी तरह से पता चल गया था। आपने पहले अपने इंद्रियों को खूब जीत करके तपस्या की ना, फिर उन इंद्रियों ने ही आपको देखो हरा करके सीता में प्रेम करवाया, और इस कारण से आज आपकी क्या दशा हुई है। आप उस जनस्थान के अंदर खर को मरा हुआ सुनकर के भी आपके मन में यह नहीं आया कि मैं इससे क्यों निरर्थक बैर लूं? मैं तो उस समय खर की मृत्यु से ही समझ गई थी कि अरे राम कोई सामान्य नहीं है, ये तो बड़ा विलक्षण है। तदा रामो न मानुष है, राम मनुष्य नहीं है, ये मैं तभी समझ गई थी। और हे प्राणनाथ, जिस समय हनुमान जी यहां आए थे उस समय हनुमान जी ने आपको कहा था कि सीता हमें दे दीजिए, यदि आप सीता को हनुमान के साथ लौटा देते और ये कहते कि देखो मानव आज तो तुम आ गए हो, अब आइंदे तुम ऐसा उत्पात मत करना, थोड़ा दो तीन डांट फटकार भी लगा देते, आपकी बात भी रह जाती और कहता कि राम को बुलाइए सीता को ले जाइए, तो भी संधि हो जाती, या हनुमान के साथ सीता को भेज देते, या हनुमान के साथ में आप चले जाते। आप भी तो दौड़ने वाले थे, हनुमान भी तो आकाश में दौड़ने वाला थे, या आप राम को यहां बुला लेते, या आप सब लंका के बीच में राम को लक्ष्मण को बुलाकर हनुमान को कहते कि तुम दोनों को ले आओ और यहां हम सीता को दे देंगे। उस समय में आपकी कितनी अच्छी मैत्री हो जाती है। लेकिन उच्च मानोपी, मैंने खूब आपसे कहा फिर भी आपने उस पर विचार नहीं किया। हे महाराज, सीता के विषय में आपने हमसे किसी से भी सलाह नहीं ली, लंका में रहने वाले एक भी प्राणी से आपने सलाह नहीं ली, लंका के बाहर रहने वाले मारिस से आपने सलाह ली, मारिस ने भी आपको मना किया था। अकस्मात च अभिकाम, आपने अकस्मात ये सारा काम किया, बिना सोचे विचारे काम किया, जिसका परिणाम क्या हुआ है आपका ऐश्वर्य भी चला गया, आपका शरीर भी चला गया और आपके हम लोग जो लगने वाले हैं वो सब भी दुर्गति को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार से अरुंधत्या विशिष्टामताम रोहिण्याश्चापि दुर्मते, अरुंधति जो है वो वशिष्ठ जी की पत्नी, रोहिणी है वो चंद्रमा की पत्नी, इसी प्रकार से राम जी महाराज की पत्नी सीता है उसको आपने धर्षित किया, अपमानित किया, उस सीता को आप बलपूर्वक लेकर के आए। ये देखिए आपने अरुंधति का अपमान किया है, रोहिणी का अपमान किया है, सीता कोई कम थोड़ा ही है, ये आपके लायक काम नहीं था। आप सबको जीतने वाले होकर सीता को आप चुपचाप लेकर के आए। सीता सीता इस पृथ्वी की पृथ्वी है, सीता लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, माने लक्ष्मी माने विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, और उसकी भी लक्ष्मी माने शोभा, वो लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है। सीता सर्वांग सुंदरी है, सीता तेजोमयी है, सीता बड़ी दिव्य है, और उस दिव्य तेज के सामने तुम ठहर नहीं सकते थे, इसी कारण तुम छद्म वेश में गए। इसमें आपका कलंक लगा, कितना अच्छा रूप बनाया, आप एक साधु ब्राह्मण के रूप में गए थे, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस रूप में आप में जो अच्छाई दिखाई, उस अच्छाई के कारण से ही सीता ने आपका सत्कार किया। यदि आप राक्षस रूप में जाती तो सीता को आप पकड़, राक्षस रूप में जाते तो सीता को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सीता में अच्छाई अच्छाई थी ना, इसलिए अच्छाई से अच्छाई का संबंध हुआ। लेकिन राक्षस रूप में जाने पर सीता तो थोड़ा सा हुंकार करती, तुम पास में जा नहीं सकते थे। प्राणनाथ इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे कोई क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हो क्या हो। भ्रातः पर्याग पर्याग ते काले कर्ता नास्त्यत्र संशय, जो पहले पाप करता है उसको उसके बाद फल अवश्य मिलता ही है, चाहे कुछ भी कर लो। शुभ करोगे तो शुभ फल मिलेगा और अशुभ करोगे तो अशुभ फल मिलेगा। आज विभीषण ने कितना अच्छा काम किया, सुग्रीव का विभीषण ने कितना अच्छा काम किया, सुग्रीव ने कितना अच्छा काम किया। आज सुग्रीव को राज्य मिल गया, विभीषण को राज्य मिल गया, आपको आज रणभूमि में धूल चाटनी पड़ती है। क्यों गए आप सीता को लाने के लिए? यहां तो बहुत आपकी स्त्रियां थी ही, सीता से बहुत अधिक सुंदर स्त्रियां थी, परंतु जब व्यक्ति के मन में पाप करने की आती है तो वो वास्तविकता को नहीं देखता। हे रावण, आप देखो मेरे से अधिक सुंदर सीता नहीं है, गुणों में भी नहीं है और रूप में भी नहीं है, इतनी श्रेष्ठ हूं मैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे स्वीकार न करके सीता की तरफ मन लगाया, क्या लाभ हुआ आपको? साक्षात मृत्यु मिली, ये मृत्यु आपको सीता के कारण से मिली, अन्यथा आप अभी संसार में मरने लायक नहीं थे, बहुत वर्षों तक लंका में रहते। अब देखो आप तो मृत्यु के साथ चले गए और सीता अब राम के साथ में चली जाएगी, आप तो मृत्यु के साथ में चले गए इसलिए आपको तो अब कोई शोक रहा नहीं, सीता राम के साथ चली जाएगी तो सीता को भी शोक रहा नहीं, शोक तो मेरे पाति आ गया, मैं कहां जाऊंगी, मेरे पुण्य बहुत है कम है, इसीलिए जो है मैं शोक रूपी सागर में डूब गई। कैलाश मंदराचल पर्वत सुमेरु पर्वत चैत्र रथ वन बड़े बड़े देवताओं के उद्यान, उन बगीचों में आपने मुझे पुष्पक विमान में बैठा बैठा कर कितना सैर सपाटा कराया था, कैसे कैसे देश देशांतरों में आपने हमको घुमाया था। आज वो आपका दिया हुआ सुख है आपके मरने से मेरा दुख का कारण बन गया। इसलिए देखो महाराज जी एक बात कहते थे कि ये जो संसार का जो सुख है यही दुख बनकर के प्रिय स्वाम रोदस्यति, ये जो तुम्हारा आज जो प्रिय लगता है ये प्रिय ही तुमको रुलाएगा। धन अच्छा लगता है धन के विषय में रोना पड़ेगा, परिवार के संबंध अच्छे लगते हैं माँ के विषय माँ में मोह है तो माँ मरेगी तो रोना पड़ेगा, पुत्र मरेगा तो मरना पड़ेगा, पति मरेगा तो रोना पड़ेगा पत्नी को, पत्नी मरेगी तो पति को रोना पड़ेगा, ये कष्ट होगा ही, क्योंकि वो पहले उसमें प्रियता कर ली हमने, वो प्रिय स्वाम रोत्स्यति, रोत्स्यति माने रुलाएगा। तो ये बात जो हम सुनते थे ये बात आज सच्ची सच्ची हो गई। हे महाराज, आपका ये सुंदर मुख यहाँ पढ़ने लायक नहीं था, रणभूमि में गिरने लायक नहीं था, ये तांबा जैसा आपका लाल मुख इस प्रकार से मद से व्याकुल हुआ हुआ यहाँ पढ़ने लायक नहीं था, आप तो बड़े बड़े महलों में रहने वाले थे, पर करें क्या, ये आपके कारनामों से आप यहाँ पर पड़े हैं, आपका मस्तिष्क विदीर्ण हो गया, आपके शरीर में बाण बाण लग गए, आप इस दशा को प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए आप, मेरा तो बेटा भी मर गया, मेरे पति भी मर गए, जो पहले मैं महलों के अंदर बड़ी गर्वीली होकर चलती थी कि मेरे मेघनाथ जैसा बेटा है,